महाबंद पुस्तक पहिली लेक्चर नंबर 9 ओम नमः सिद्धेय ओम नमः सिद्धेय ओम नमः सिद्धेय ओम श्रुतात्मने नमः नमो अरिहंतानं नमो सीतानं नमो आयरियाणं नमो वर्चायाणं नमो लोये सौवसाहूलं सिद्धादद्धर्थमला विशुद्ध बुद्धि अलग्ध संवत्था तिरुवण शिरसे हरया पश्यन्तु भडारया सवे। यह श्री भगवान भूत बलि भट्टारक प्रणीत महाबंध नामक सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल शास्त्र। उसमें प्रथम पुस्तक की जो प्रथम प्रकृति बंध अधिकार है उसको देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 42 पर आ गए, 42। कल हमने तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण देखे थे 16, जिसको कहते 16 भावना। तो उस पर विशेषार्थ में फिर दोबारा पूछा है, जो मूल में शंका पूछी थी, तो कहते यहाँ यह शंका उत्पन्न होती है कि जब अन्य कर्मों के बंध के कारण नहीं बताए गए, नहीं मूल में नहीं, उन्होंने विशेषार्थ में ही खोला, मूल में प्रश्न नहीं था, तब तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारणों का सूत्रकार ने क्यों पृथक रूप से उल्लेख किया है। 42 पेज। इसके समाधान में वीर सेनाचार्य धवला टीका में लिखते हैं कि तीर्थंकर के बंध के कारण ज्ञात न होने से उनका पृथक उल्लेख करना उचित है। उसके बंध का कारण मिथ्यात्व नहीं है, कारण मिथ्यात्व जीव के तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं होता। सम्यक दृष्टि के ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, असंयम भी बंध का कारण नहीं है, क्योंकि संयमी जीव भी उसके बंधक होते हैं। ये वाक्य रचना कुछ जैसे ऊपर लिखा ना, मिथ्यात्व नहीं है बंध का कारण, क्योंकि उनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। यहाँ लिखिए असंयम भी बंध का कारण नहीं, यानी वैसे ही अगर वाक्य रचना देखते हैं तो असंयम भी बंध नहीं कर सकते, ऐसा अर्थ निकल सकता है, ऐसा अर्थ निकलेगा ना उसमें से। असंयम भी नहीं बंध का कारण नहीं है, बंध का कारण मिथ्यात्व नहीं है, वैसे अगर असंयम नहीं कहेंगे हम तो कहेंगे असंयमी को नहीं बनता, ऐसा उसका अर्थ निकलेगा, परंतु वैसा ये कहना नहीं चाहते हैं। नहीं 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 ना ना, असंयम चौथे गुणस्थान वाले करते प्रारंभ ही, चौथे पांचवे छठे या सातवें कहीं पर भी प्रारंभ होता है। अभी श्रेणिक राजा को कहा ऊपर के गुणस्थान पर, चौथे में ही किया प्रारंभ भी और बंध रहा था ना तीर्थंकर प्रकृति। ख्याल में ना क्या कहना चाहता, यानी उनकी वाक्य रचना हाँ गलत। आगे कहते कषाय भी बंध का कारण नहीं है, कारण कषाय के होते हुए भी इसके बंध का विच्छेद देखा जाता है, अथवा बंध का आरंभ भी नहीं होता है। कषाय होते हुए आरंभ नहीं होता है,
कषाय
उदय की बात कर, बंद की बात चल रही
है।
तो बंद का विच्छेद कषाय के होते वो तो एक वाक्य समझ में आए, आगे जो लगे अथवा बंद का आरंभ भी नहीं होता है। ये तो
विशुद्धि के कारण ही आरंभ होगा, ऐसे उनका कहना।
तो क्या कषाय नहीं है वहां पर? नहीं नहीं, वो तो अलग प्रश्न था, वो प्रश्न ही अलग।
क्या बताना है समझ नहीं आ रहा। ये भी जो बताया ना कि असंयम भी, असंयम में कीर्तन का गोत्र बनता है ऐसा नहीं है, संयम भी बनता है ऐसा उनको बता रहे।
वहाँ उल्टा करना चाहिए था कि संयम भी बंद का कारण है क्योंकि असंयमी जीव भी उसके बंधक होते हैं, ऐसा वहाँ लिखते तो प्रॉपर।
उन्होंने जो लिखा है वो भी कोई गलत नहीं है, उनको एक कट एक ही कट करना चाहिए। पहले बोल रहे कि मिच्छा भी कौन है, अभी यहाँ बताए असंयम के कारण से चिंतन बनता है ऐसा नहीं, संयमी भी बांध रहे।
अपन असंयमी भी बांध रहे ना, वहाँ वैसा मिथ्यात्व भी नहीं बांध रहे थे। ये डिफरेंट उनकी उसकी कहा बात है। यहाँ 16 कारण की वो तो बाद में बताएंगे। अच्छा ठीक है, अभी वो क्या कहना चाहते हो देखेंगे। कदाचित मंद कषाय को बंद का कारण कहे तो यह भी नहीं बन सकता, कारण तीव्र कषायुक्त नारकियों में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध देखा जाता है। तीव्र कषाय भी उसका कारण नहीं है क्योंकि मंद कषाय वाले सर्वार सिद्धि के देवों और अपूर्व कर्म गुणस्थान वालों में भी उसका बंध होता है, यानी कोई मात्र वो कारण नहीं है, अकेला वही कारण है ऐसा नहीं है। ये असंयम भी लिखा ना, वो मात्र असंयम बंध का कारण नहीं है ऐसा लिख सकते हैं, मात्र कषाय कारण। देखो मात्र असंयम कषाय बंध का कारण नहीं, वैसे मात्र कषाय बंध का कारण नहीं है। वहां का कषाय बंध का कारण है कषाय के होते हुए, वो भी वाक्य नहीं घटित होते कषाय में। जाने दो, जो है उसको पढ़ेंगे। समझो ये मंदव की बात हो गई। बंद का कारण कदाचित सम्यक को कहे तो यह भी ठीक नहीं है, सम्यक दर्शन होते हुए भी बंद का कहीं कहीं अभाव देखा जाता है। यदि दर्शन की निर्मलता को कहे तो दर्शनों के क्षय करने वाले सभी व्यक्तियों के तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना चाहिए था, किंतु ऐसा भी नहीं है। ये वाक्य सारे बराबर है। अतः दर्शन की शुद्धता भी कारण नहीं है। कार्य कारण भाव का नियम तो तब बनता है जब कारण के होने पर नियम से कार्य बन जाए। सब क्षायिक समयक्ति जीव तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं करते, ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाली शंका के निराकरण के लिए भूतबली स्वामी ने कहा है इन 16 कारणों से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध करते हैं। 16 कारणों की चर्चा क्यों की उसकी यहाँ उन्होंने बात की है। शंका, नाम कर्म के भेद तीर्थंकर की गोत्र संज्ञा क्यों की गई है? ये तो नाम कर्म का भेद है और उसको गोत्र गोत्र क्यों कह रहे हो? समाधान, उच्च गोत्र के बंध के अविनाभावी होने से तीर्थंकर प्रकृति को भी गोत्र कहा है। नीचे वो भी लिखे प्राकृत में, कथम तिथयरस्य नाम कम्मावयवस्य गोदसन्ना, नाम कर्म का अवयव होकर भी गोत्र क्यों कहेंगे? न उच्च गोद बंध अविनाभावितेन तिथयरस्य भी गोदत्त सिद्धिदो।
ये
हाँ, ये पृष्ठ 28 पर दौला की नहीं, इसी में हो सकता है ना, महाबंध की भी उन्होंने की है ना। ये तो मूल में उन्होंने अभी कहाँ से लिया है? वीरसेन स्वामी का लिया या कैसे?
तो
शंका समाधान उन्होंने धवला में से उद्धृत किया, बराबर है। तीर्थंकर के बंध का प्रारंभ मनुष्य गति में ही होता है, इस बात का परिज्ञान कराने के लिए सूत्र में तथ्य शब्द का ग्रहण किया है। तथ्य क्या कहा था सूत्र में? तथ्य इमे ने ही सोलह सकार ने ही, ये पृष्ठ 41 पर प्राकृत में 1, 2, 3, 4, 5 छठी लाइन नीचे से लास्ट उसका शब्द तथ्य। तथ्य ने मनुष्य मनुष्य गति में यानी 41 पेज प्राकृत नीचे से छठी लाइन बोला और इतना ही भी बोला था छठी लाइन का लास्ट शब्द
बोला था
वो तथ्य उसका यहाँ करते हैं कि तीर्थंकर के बंध का प्रारंभ मनुष्य गति में ही होता है 42 पेज, इस बात का परिज्ञान कराने के लिए सूत्र में तथ्य शब्द का ग्रहण किया है। फिर शंका, तीर्थंकर के बंध का प्रारंभ अन्य गतियों में क्यों नहीं होता है? नीचे वही जो चर्चा हुई है कि अन्य गति से किम न प्रारंभ होदित्य उत्ते, तो ये न होगी न होती, केवल नाणो वलख्य जीव दव सहकारी कारणस तिथेर नाम कम बंध पारंभस तेन विना समुपत्ति विरोहादो। सुनाई दे
रहा?
अभी यहाँ हिंदी में पढ़ेंगे, समाधान पढ़ेंगे। तीर्थंकर प्रकृति में सहकारी कारण केवल ज्ञान से उपलक्षित जीव द्रव्य, उसके बिना बंध का प्रारंभ नहीं होता।
केवल ज्ञान से उपलक्षित जीव द्रव्य तो वहाँ पे भी
है। कहाँ पर?
सभी
केवल ज्ञान जिसके है ऐसा जीव द्रव्य, किसके प्रेजेंस में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, प्रारंभ होता है, तो केवल ज्ञानी जीव के सान्निध्य में होता है। वो तीर्थंकर होता है या अन्य सामान्य केवल भी होगा।
यहाँ तो बंध की बात है,
बंध के प्रारंभ की बात है।
हाँ, तो बंध के प्रारंभ में तो वहाँ पे तो केवल ज्ञान नहीं हुआ।
अरे उस जीव को नहीं, किसके सान्निध्य में होता है? तीर्थंकर के, आप ले लो। हाँ, तीर्थंकर के पाद मूल में होता है ना।
हाँ,
उसकी बात है। उसके बिना बंध का प्रारंभ नहीं होता। सहकारी कारण यानी निमित्त की बात चल रही है यहाँ पर। निमित्त रूप से वहाँ कोई केवल ज्ञान से परिणत ऐसा जीव द्रव्य वहाँ होना चाहिए। मनुष्य गति में केवल ज्ञान से उपलक्षित जीव पाया जाता है, इससे मनुष्य गति में ही बंध का प्रारंभ कहा है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य गति में केवल ज्ञान उत्पन्न होकर तीर्थंकर प्रकृति पूर्ण विकसित हो अपना कार्य कर सकती है, अन्य गति में यह बात नहीं है। क्या कहना चाहते? देखो, केवल यानी मात्र केवल ज्ञानी का सान्निध्य तो तीन गति वालों के पाए जाता है। कौन से तीन मंजू बहन?
मनुष्य गति, देव गति, अतिरिक्त।
हाँ, क्योंकि समोचरण में सभी है, परंतु मनुष्य गति वाले ही आगे चलकर केवल ज्ञान उत्पन्न कर सकते हैं, पूर्ण विकास होता है उसका, अन्य गति में नहीं, इसलिए उसका प्रारंभ भी यहाँ लिखे ना लास्ट में, अतः तीर्थंकर प्रकृति का अंकुरारोपण मनुष्य गति में ही होता है। हाँ, शुरुआत उसकी, प्रारंभ। गोमरसार कर्मकांड की संस्कृत टीका में लिखा है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध मनुष्य गति में प्रारंभ किया जाता है, क्योंकि अन्य गतियों में विशिष्ट विचार क्षोभशम आदि सामग्री का अभाव है। इसी कारण मनुष्य गति का सूचक नारा यह पद 93 गाथा में आया है। टीकाकार के ये शब्द महत्वपूर्ण है, नरा इति विशेषण शेष गति ज्ञानम अपाक करोति, विशिष्ट प्रणिधान क्षोभ समाधि सामग्री विशेषा भावात्, यानी नर कहने से अन्य गतियों का वहाँ निराकरण होता है। अन्य गति में क्यों नहीं, क्योंकि विशिष्ट प्रणिधान नहीं, विचार क्षोभम वगैरह रूप जो सामग्री है उसका वहाँ अभाव है। किन्हीं आचार्यों का मत है इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रथमोपशम सम्यक्त्व में नहीं होता, इसके बारे में दो मत है, कोई कहते होता है कोई कहते नहीं होता, क्योंकि उसका काल स्तोक अंतर्मूर्त प्रमाण है, उसमें षोडश कारण भावनाएं नहीं भाई जा सकती। महाबंधकार का यह अभिमत नहीं है। यह बंध प्रत्यक्ष केवली श्रुत केवली के चरणों के समीप ही होता है, श्रुत केवली भी लिए यहाँ पर। कारण अन्यत्र उस प्रकार की विशिष्ट विशुद्धता का अभाव है। नीचे लिखा है ये सब, ये जो गोमरसार जो है कर्मकांड उसका संस्कृत टीका से ये नीचे लिखा है, प्रथमोपशम सम्यक्त्वे शेष द्वितीयोपशम क्षावक्षमिक क्षायिक सम्यक्त्वे शुच्च, यानी सभी सम्यक्त्व लिए, असंयता प्रमत्तांत, असंयत अप्रमत्तांत, यानी असंयत से लेकर अप्रमत्त तक, असंयत अप्रमत्तांत मनुष्या एव मनुष्य ही तीर्थकर बंधम प्रारंभ प्रारभन्ते, तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ करते हैं। ते अपि प्रत्यक्ष केवली श्रुत केवली श्री पादोपांत एव, यानी प्रत्यक्ष केवली या श्रुत केवली के हम कहते हैं ना पादमूल में, तीर्थंकर प्रकृति के बंध की बात। हाँ, उसके लिए भी यही है, उन्हें अपवाद ये कि जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहा है नरक से जो आ रहा है। वही अपवाद क्या है, वो जो गरज नहीं है जो बताया है वो इसके लिए बताया है कि जो तीर्थंकर प्रकृति का ऑलरेडी बंद कर रहे हैं, दूसरे तीसरे नरक से आने वाले हैं। नया हुआ कि शायद के साथ आए थे, क्योंकि वो तब तो भूख भूमि चल रही थी, शायद के साथ वहाँ जीव उत्पन्न होते थे। के लिए आवश्यक नहीं है ऐसा, क्योंकि कोई ठीक है, हम देखेंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे यहाँ। बंध सामित्य विचय मूल पृष्ठ 75 में लिखा है, ये वही गोमरसार की बात चल रही है ना, पारद्ध तिथैर बंधादो तदीय भवे तिथैर संत कम्य जीवाणम मोक्ष गमन नियमादो, यानी जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ किया है वहां से लेकर तीसरे भव तक अधिक से अधिक तीर्थंकर सत्ता वाले तीर्थंकर कर्म की सत्ता वाले जीवों के मोक्ष गमन का नियम है। लिखा आगे, तीर्थंकर प्रकृति के बंधारंभ के भव से तृतीय भव में तीर्थंकर कर्म के सत्वयुक्त जीवों के मोक्ष गमन का नियम है। अतएव तीर्थंकर प्रकृति का बंधक तीन भव से अधिक संसार में नहीं रहता। इसलिए हमने देखा रक्षायिक है, वो भूमि में जा भी सकता है, ये नहीं जाएगा। पर्यायार्थिक नहीं की अपेक्षा इस प्रकृति के बंध के कारण 16 कहे गए हैं। द्रव्यार्थिक नहीं का अवलंबन करने से एक कारण भी इसके बंध का हेतु है, दो भी कारण होते हैं, अतः 16 ही होते हैं या नहीं, इस संशय के निवारण के लिए 16 कारणों की गणना सूत्र में की है। इन भावनाओं के स्वरूप पर वीरसेनाचार्य ने बंध सामित्य विचय नामक तृतीय खंड की धवला टीका में विशद विवेचन किया है। उसका मर्म इस प्रकार है। दर्शन विशुद्धता, यह भावना 16 कारण भावनाओं में प्रथम संग्रहित की गई है। इसका भाव तीन मूर्ता तथा अष्टमल रहित निर्मल सम्यक दर्शन का लाभ होना है, उसी को दर्शन विशुद्धि कहा। शंका, यदि इस एक ही भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है तो सभी सम्यक जीव उसका बंध क्यों नहीं करते हैं? उसका समाधान, शुद्ध नये से मात्र तीन मूर्ता तथा अष्टमलों से व्यतिरिक्त पना ही दर्शन विशुद्धता नहीं है। इसके साथ ही साथ साधु प्रासुक परित्यागता, साधु समाधि संधारणता, साधु वैयावृत्ति युक्तता, अरहंत भक्ति, भविष्यत भक्ति, प्रवचन वत्सलता, प्रवचन प्रभावनता, अभिक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता आदि का भी समावेश होना आवश्यक है। इस प्रकार अन्य भावनाओं का भी संग्रह करने वाली दर्शन विशुद्धता तीर्थंकर का बंध करती है, यानी अन्य भावनाएं इसमें गर्भित है, ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। विनय संपन्नता भी तीर्थंकर कर्म को बांधती है। विनय के ज्ञान दर्शन तथा चारित्र की अपेक्षा तीन भेद है, यानी ज्ञान विनय, दर्शन विनय और चारित्र विनय। विनय नाम कहाँ सुना है मंजू भी? विनय मिथ्यात्व है, 16 कारण है। विनय नाम का तब भी है। तो ज्ञान विनय में अभिक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता, बहुश्रुति भक्ति, प्रवचन भक्ति संग्रहित है। दर्शन विनय का अर्थ है प्रवचनोपदिष्ट, यानी प्रवचन में बताया हुआ संपूर्ण तत्वों का श्रद्धान तथा त्रिमूढ़ता और अष्टमल का त्याग करना। इसमें अरहंत सिद्ध भक्ति, क्षणलव प्रतिबोधनता, लब्धि संवेग संपन्नता तथा प्रवचन प्रभावनाता का सद्भाव पाया जाता है। चारित्र विनय में शीलव्रतेषु निरतिचारिता, आवश्यकेषु अपरिहीनता, यानी जो शील व्रत है उसमें निरतिचार पालन करना, जो आवश्यक होते हैं उसमें कुछ कम नहीं करना, अपरिहीन यथाशक्ति तप, साधु प्रासुक परित्यागता, साधु समाधि संधारणता, साधु वैयावृत्ति योग्य युक्तता और प्रवचन वत्सलता संग्रहित है। ये तो इसका विस्तार हमने रत्नगण शावकाचार्य में बहुत अधिक विस्तार से सभी भावनाओं की चर्चा की थी। इस प्रकार अनेक भावनाओं से समन्वित एक विनय संपन्नता रूप भावना तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करती है। उसमें दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय सब आ गए, उसमें सभी 16 भावना भी समाहित होती है। यह दर्शन तथा ज्ञान की विनय देव तथा नारकियों में कैसे संभव हो सकती है, इससे इसे मनुष्यों में ही कहा है। शंका, जिस प्रकार यहाँ देवनारकियों के दर्शन और ज्ञान विनय का अभाव कहा है, उसी प्रकार चारित्र विनय का अभाव क्यों नहीं कहा है? उसका समाधान, ज्ञान दर्शन विनय का विरोधी चारित्र भी नहीं हो सकता। अर्थात ज्ञान दर्शन के विनय के अभाव में चारित्र विनय का भी अभाव होगा। यानी जहाँ ज्ञान दर्शन विनय ही नहीं है तो ये भी नहीं हो सकती, ये कहना चाहते हैं। यह बात प्रकट करने को चारित्र विनय का पृथक उल्लेख नहीं किया है। शील व्रतेषु निरतिचारता से भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से विरति होना व्रत है। शील और व्रत बता रहे ना, तो व्रत किसे कहना? ये जो पांच पाप है उसके विरत होना वो है व्रत। व्रत का रक्षण करने वाला शील कहलाता है। मद्यपान, मांस भक्षण, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुसक वेद का अपरित्याग अतिचार कहलाता है। मध्य, मांस और ये सारे कषाय और नो कषाय लिए, इनका अभाव करना शील व्रतेषु निरतिचारता है। ये अतिचार है, अपरित्याग अतिचार है, परित्याग निरतिचार है। और वो निरतिचार और किसमें? शील है और व्रत है। इससे तीर्थंकर कर्म का बंध होता है। शंका, यहाँ शेष 15 कारण किस प्रकार संभव हो गए? उसका समाधान, सम्यक दर्शन, क्षणलव प्रतिबोधनता, लब्धि संवेग संपन्नता, साधु समाधि संधारणता, वैयावृत्ति योग युक्तता, साधु प्रासुक परित्यागता, अरहंत बहुश्रुता और प्रचन भक्ति, प्रवचन प्रभावनाता के बिना शील व्रतेषु अनतिचारता संभव नहीं है। असंख्यात गुण श्रेणी युक्त कर्म निजरा में जो हेतु है उसे व्रत कहते हैं। सम्यक्त के बिना केवल हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्म तथा परिग्रह के त्याग मात्र से ही वह गुण श्रेणी निर्जरा नहीं हो सकती। वीरसेन आचार्य के वचन है। क्या? जहाँ सम्यक्त नहीं है और इनका परित्याग, पूरा त्याग कर दिया है पांचों पापों का, तो कहते उससे वो निर्जरा नहीं होगी गुण श्रेणी निर्जरा। कारण दोनों के द्वारा होने वाले कार्य का एक के द्वारा संपन्न होने का विरोध है। यानी सम्यक तो पूर्वक ही इसका जो होगा तो ही वहाँ वो गुणश्रेणी निर्जरा होगी। षड द्रव्य नव पदार्थ के समूह रूप लोक को विषय करने वाली अभिक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता के बिना शील व्रतों में कारणभूत सम्यक्त्व की अनुपपत्ति है। पहले क्या बताया, मात्र सम्यक्त्व से ये गुणश्रेणी निर्जरा नहीं होती है, तो उसके साथ वो विरति भी होनी चाहिए। अकेले सम्यक्त बिना के व्रतों से भी नहीं होगी, और बस सम्यक्त हुआ असंयम ही तो भी उसके असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जो क्षेत्र द्रव्य नौ पदार्थ है उसको जो विषय करने वाला जो ज्ञान है, अभिक्षण ज्ञान है, उसके बिना सम्यक्त नहीं हो सकता, अनुपपत्ति नहीं पाया जाता। इस प्रकार उसमें सम्यक दर्शन के समान सम्यक ज्ञान का भी सद्भाव पाया जाता है। यथाशक्ति तप, आवश्यक अपरिहीनता तथा प्रवचन वत्सलत्व रूप चारित्र विनय के बिना यह शील व्रतेषु निरतिचारिता नहीं बन सकती। ये कहने के लिए तो 16 अलग अलग बताए हैं, वो एक दूसरे के बिना कैसे नहीं होते हैं ये बात यहाँ समझा रहे हैं। इस प्रकार व्यापक अर्थयुक्त यह भावना तीर्थंकर नाम कर्म के बंध का कारण है। अब आवश्यकेशु अपरिहीनता, ये आवश्यक क्या होते हैं? तो समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और विसर्ग के भेद से आवश्यक छह प्रकार का कहा है। अब समता किसको कहना? शत्रु मित्र मणि पाषाण सुवर्ण मृत्तिका में राग द्वेष का अभाव समता है, यानी इष्ट अनिष्टता उसमें नहीं भासित होती है, तो उसमें राग और द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते, तो उसको कहेंगे समता। हाँ, मणि पाषाण, मणि वो तो मणि यानी रत्न, वो तो पृथ्वी का एक है,
वो
तो अंग्रेजी में उसको स्टोन ही कहते हैं ना, वो प्रेशियस स्टोन और ऑर्डिनरी स्टोन है। अतीत, अनागत तथा वर्तमान काल संबंधी पंच परमेष्ठियों का भेद न करके नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम इत्यादि द्रव्य स्तुति का कारण नमस्कार स्तुति कहलाता है। यानी द्रव्य ने अपने मुंह से बोलकर भी जो नमस्कार करते हैं उसको क्या कहेंगे? स्तुति। उसमें किसी का नाम नहीं लिया, पदों को नमस्कार किया। और ऋषभादि 24 तीर्थंकर, भरतादि क्षेत्रों के केवली, आचार्य, चैत्यालयादि का पृथक पृथक रूप से नमस्कार करना अथवा गुणों का अनुस्मरण करना वंदना है। इसमें आता है ना प्रवचन सार के मंगलाचरण। पंच महाव्रतों तथा 84 लाख उत्तर गुणों में लगे हुए कलंकों का प्रक्षालन करना प्रतिक्रमण है। जो दोष लगते हैं तो उसका यह प्रतिक्रमण किया जाता है। महाव्रतों के विनाश के कारण अथवा उनमें मलिनता लगाने वाले दोषों का जिस प्रकार अभाव होगा उस प्रकार मैं करूंगा, इस प्रकार चित्त से आलोचना करके 84 लाख व्रतों की शुद्धि का प्रतिग्रह करना प्रत्याख्यान है। तीन बातें आती है ना, एक होता है प्रतिक्रमण, एक है प्रत्याख्यान और एक है आलोचना। प्रतिक्रमण यानी जो पूर्व में दोष लग चुके हैं उस संबंध में वो प्रायश्चित पूर्वक अपने अंतरंग में सिद्ध हो जाना, वो तो प्रतिक्रमण। आलोचना यानी वर्तमान जो दोष लगते हैं उसका अभाव करना या उसको छोड़कर स्वरूप में स्थिर होना, वो है आलोचना। और मैं ऐसा नहीं करूंगा, यह है प्रत्याख्यान। यानी इसका अर्थ क्या? प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान भूत, वर्तमान और भविष्य संबंधी दोषों का प्रक्षालन करना। शरीर आहार आदि से मन वचन की प्रवृत्ति को अलग करके ध्येय में रोकने को विसर्ग कहते हैं। शरीर के प्रति अपना उपयोग छोड़कर यहां प्रवृत्ति, मन वचन की प्रवृत्ति लिए, इन छह आवश्यकों की अपरिहीनता यानी अखंडता को आवश्यक अपरिहीनता कहते हैं। इसके द्वारा तीर्थंकर धर्म का धर्म लिखा बंद होता है।
ये जो छठ आवश्यक बताए ये तो
मुनियों की अपेक्षा
और राजा श्रेणी तो हमारे श्रावक ही थे
ना, उनके योग्य जो
आवश्यक कौन से? उनके तो
वो तो जहाँ लगेंगे उसमें लगेंगे, अभी उनके गृहस्थ के योग्य लगेंगे उसमें, वो देव पूजा गुरु पास से जो कुछ उसी में वो गर्भित होते ही है। जिसके जिस भूमिका में है वहाँ जो लगते हैं उसकी बात वहाँ करेंगे। तीर्थंकर प्रकृति कहना था या तीर्थंकर कर्म का करो ना धर्म के बदले, तीर्थंकर कर्म का ایک اکثر بدلنے سے کام چلتا ہے. یہاں شیش کارنوں کا ابھاؤ نہیں ہوتا. درشن وشدھی ونے سمپنتا ورتشیل نرتیچارتا کھنلو پرتیبودھنتا لبدھی سمویگ سمپنتا یتھاشکتی تپ سادھو سمادھی سندھارن ویاوتی یوگ یوکتتا پراسو پریتیاگتا ارہنت پروشت پروچن بھکتی پروچن پربھاونا پروچن وتسلتا ابھیکشن گیانوپیوکتتا کے بنا چھ آوشکوں کی نرتیچاریتا نہیں بن سکتی. یعنی باقی سب اس میں ہے ہی. اتہ آوشکیشو اپریہینتا تیرتھنکر نام کرم کا چترتھ کارن ہے. ایک ایک میں کیسے باقی سبھی گربھت ہے وہ بتاتے بتاتے ایک ایک کو سدھ کرتے جا رہے ہیں. سولہ کارن بتائے نا, شوڑش کہتے ہو سولہ کارن تیرتھنکر پرکرتی کے بند کے کارن. क्षणलव प्रतिबोधनता, अभी एक आंकड़ा लिखा है नीचे फुट नोट में, आवली असंख्य समया संख्येत जावली समूहम उत्साहसो. यानी आवली किसको कहते हैं? असंख्यात समयों की एक आवली होती है. कितने असंख्यात है मंजू भाई? जगन नियुक्त असंख्या. और कहते संख्येत जा आवली समूह उत्साहसो, संख्यात आवली के समूह को उच्छ्वास कहते हैं. सत्य उत्साह हो, सात उच्छ्वासों का एक स्तोक होता है थोवो. सत्य थोवो लवो भणियो, और सात स्तोकों का एक लव होता है. क्षण लव प्रतिबोधनता. क्षण लव शब्द काल विशेष का द्योतक है. नीचे भी लिखा है क्षण लवा नाम काल विशेषा. उस काल विशेष में सम्य दर्शन ज्ञान व्रत तथा शील रूप गुणों का उज्जवल करना, अर्थात कलंक का प्रक्षालन करना अथवा व्रतादि की प्रदीप्ति अर्थात वृद्धि करना प्रतिबोध है. उसका भाव प्रतिबोधनता है. क्षणलवों की प्रतिबोधनता को क्षणलव प्रतिबोधनता कहते हैं. यह अकेली भावना भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करती है. यहां भी पूर्व की भांति शेष कारणों का अंतर्भाव रहता है. यानी इतने अल्प काल में वो ये बातें समय दर्शन ज्ञान व्रत वगैरह में उज्ज्वलित करते हैं. लब्धि संवेग संपन्नता. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जीव के समागम का नाम लब्धि है. लब्धि ने लाभ प्राप्ति, तो जीव की सबसे महान लब्धि कौन सी? तो मोक्ष की प्राप्ति, उसको लब्धि का. तो उसके कारण क्या है? सवर निर्जरा, तो उसको भी लब्धि कहेंगे. तो संवर कैसे होते हैं? बंध का आश्रय के अभाव पूर्वक संवर होता है. और फिर बंध जो ऑलरेडी हो चुका है उसकी जो हानि है वो निर्जरा है, तो वो ही लब्धि है. इसलिए सम्यक्त को भी लब्धि कहा और चारित्र को भी लब्धि कहा. मूल में लब्धि कौन सी थी? मोक्ष की. और उसके कारण रूप जो सम्यक्त और चारित्र है उसको भी लब्धि कहेंगे. तो यहाँ कहते हैं समय दर्शन ज्ञान चारित्र में जीव के समागम का नाम लब्धि है. लब्धि के लिए जो संवेग है वह लब्धि संवेग है. संवेग का अर्थ मालूम है? हाँ बोलो. संसार से भय लगना और ये धर्मानुराग रूप बुद्धि होना, ये हाँ संवेग निर्वेद ऐसे दो शब्द आते हैं उसमें. तो लब्धि के लिए जो संवेग है वह लब्धि संवेग है. उसकी संपन्नता को लब्धि संवेग संपन्नता कहते हैं. शेष कारणों के अभाव में इसका सद्भाव नहीं बनता। कारणों के अभाव का और लब्धि संवेग संपन्नता के सद्भाव का विरोध है, यानी इसमें भी अन्य सभी कारण गर्भित है। यथाशक्ति तप बल वीर्य को प्राकृत में थाम कहते हैं। यथाशक्ति तप ये समझा रहे हैं, बल यानी वीर्य को प्रकृति में प्राकृत में थाम कहते हैं। बल और वीर्य अनशनादि बाह्य और विनयादि अंतरंग द्वादश प्रकार के तप है। शक्ति के अनुसार तप करने से तीर्थंकर कर्म का बंध होता है। यह भावना ज्ञान दर्शन के बल से संपन्न धीर पुरुष के होती है तथा दर्शन विशुद्धतादि के अभाव में यह नहीं पाई जा सकती। इससे अकेले इस भावना को तीर्थंकर नाम कर्म का कारण कहा है। यानी एक एक को एक किसी एक कारण को कारण कहेंगे तो उसमें अन्य कारण गर्भित किस तरह है वो यहाँ बताए। साधु प्रसुक प्रत्यागता जो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत वीर्य विरति क्षायिक सम्यक्त की साधना करता है उसे साधु कहते हैं। यानी जो साधना करता है वो साधु, किसकी साधना? अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य विरति क्षायिक सम्यक्त वगैरह। प्रासुक का एक अर्थ है वह वस्तु जिससे जीव निकल गए हो। दूसरा अर्थ है निरवध्य यानी निर्दोष वस्तु, उसको कहते हैं प्रासुक। साधुओं को ज्ञान दर्शन चारित्र का परित्याग अर्थात दान प्रासुक परित्यागता है।
कारण का पढ़ रहे मतलब।
हाँ जी।
तो ये जो है ना जो लब्धि जो है जो सामान्य केवली को भी होगी।
कौन सी?
कोई भी अपन बात करें जैसे कि आपने सम्यक दर्शन ज्ञान में जीव का समागम लब्धि है, ये तो सामान्य केवली है जो तीर्थंकर नहीं है उसके भी मतलब आवश्यक।
केवल लब्धि नहीं कहा, लब्धि संवेग कहा।
हाँ, तो उसके भी होगा ना, जो कोई भी मोक्ष जा रहा है तीर्थंकर, तो हमें तो ऐसे कारणों को ढूंढना है जिससे कि तीर्थंकर जो कर्म बन रहा है
अकेले ने उस सभी का उसमें समावेश रूप से ले लेगा। ये सभी 16 का अभी एक एक भावना के रूप में उसका वर्णन चल रहा है। यहाँ किसी विशिष्ट जीव की यहाँ बातें उनके ये ऐसे जो परिणाम है किसी के वो ऐसे सहज रूप से बनती है ना, तो उसमें कारणों की चर्चा आई है। आप कहेंगे ऐसे तो जो कोई सामान्य केवली होने जा रहे हैं उनको भी है, परंतु तो उनको सभी को ऐसे नहीं, क्योंकि उसमें भी कितने असंख्यात लोक प्रमाण तो परिणाम है। हर परिणाम से तो नहीं बनती है, उसमें विशिष्ट परिणाम से बनती है। अब उसका स्थूल रूप से कैसा वर्णन करें, तो इस तरह से उसका वर्णन करने में आता है।
क्योंकि सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली में सर्वज्ञता और उसमें तो कोई अंतर ही नहीं।
वो तो उसका फल मिल रहा है, ये बंधा क्यों है उसकी चर्चा है। चार से सातवें गुणस्थान तक की ये चर्चा है।
तो होगा क्या, तीर्थंकर होगा तो निश्चित तीर्थंकर सब मतलब प्रत्यक्ष से लोगों को उपदेश देगा, समझ लगे बस यही, और पंच कल्याणक उसके होंगे।
उसकी कहाँ महानता है, वो बंध होना कुछ अच्छी बात थोड़ी है। फिर भी बंध है, उसका परिणाम विशिष्ट प्रकृति बंध रही है।
द्रव्य अपेक्षा से यानी
नहीं, वो तो फल की बात कर रहे हैं।
नहीं नहीं, वो तो सब में समान होगा मान लो, लेकिन जो आपने बताया असंख्यात भेद काहे के हैं, ये तो जीव के राग के जो परिणाम है उस शुभ राग से उनको ये धर्म तीर्थंकर कर्म बन रहा है, उनको नहीं बन रहा। तो आपने बताया ना कर्म बांधना अच्छी बात थोड़ी है, यू गेट द पॉइंट।
बराबर,
यही पॉइंट है अर्यंता पुण्य फला ख्याल में।
तो ऐसे करके तो कहते कि ये प्रकृति नहीं बनना अच्छा है क्योंकि वहाँ पे वो विचित्र प्रकार का रहा।
कोई सोच समझ कर बांध नहीं सकता, परंतु अभिप्राय में यदि ऐसा किसी के पड़ा है कि मुझे अमुक प्रकृति बांधनी है तो वो तो मिथ्यात्व है, तो उसको कैसे बंद होगा? ऐसे तो कोई सोच समझ कर तो बनता नहीं है, सहज उसके परिणाम होते उसके बंद होते हैं। آپ کے ابھی جو کچھ نام کرم بند رہے ہیں, وہ یہ بند رہا ہے, کتنا سوچ سمجھ کر باندھ رہے ہیں, تو اس کا ہی ورنن ایسا آئے گا کہ ایسے ایسے پرناموں سے ایسا ایسا بند ہوتا ہے. جانا ورنا دی سب کے بند رہے ہمارے, پرنتو وہاں کیسے ورنا ہے, کون سے پرناموں سے بنتا ہے, ادھک تیور انوبھاگ والا بنتا ہے, اس کا وہاں اس کی چرچا ہوتی ہے. بند تو سب کے ہے,
جو پرشست ہو رہا ہے اس میں بھی یہ زیادہ پرشست ہے, تو اس کے لیے یہ بند ہو رہا ہے, اور جس کی اتنا راگ نہیں ہو رہا ہے اس کو وہ بند نہیں ہو رہا ہے.
زیادہ پرشست ایسا بھی نہیں کہہ سکتے ہم, کیونکہ زیادہ پرشست تو نوے دسویں گن استھان والے کو ہے, وہاں بھی بند ہونا چاہیے تھا.
تیرتھنکر اور سامانیہ کیولی میں پرنڈا میں کیول ایک ہی انتر ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سبھی لوگ موکش چلے جائیں جگت میں.
کیولی میں مت کہو,
کیولی نہیں, وہ تیرتھنکر جو انتر کیا ہے,
کیولی ہونے والے,
ہونے والے کی بات,
جو آگے کیولی جو جیو جو ہے کیولی ہونے والا ہے اور سامانیہ سے ہوگا, اور ایک ایک تیرتھنکر بنے گا اس کے لیے جو ابھی کرم باندھا, کرم باندھنے کے لیے کیسے پرینام ہوتے ہیں,
یہ جو پرینام ہوتے
ہیں یہ پرینام ہوتے ہیں, تو اس پرینام اور اس فل کو اگر اپن دیکھیں تو وہاں پر تو اس کا تو ایک ہی پرینام جو جیو کہے کہ میرے ساتھ سارا جگت موکش چلا گیا.
وہ تو ہماری بھاشا, وہ تو ہماری بھاشا ہے, یہ ہم نے اس کو نام دیا کہ جیو کو ایسا پرینام ہوتا ہے کہ سب جیو اس کو جانے, یہ تو ہم نے اس کو سمپلیفائی کیا, یہاں کہیں لکھا ہے ایسا؟
کہیں نہیں لکھا ہے.
ہاں تو یہ ہماری بھاشا ہے,
کہیں نہیں لکھا.
تو یہ جو جس روپ میں انہوں نے کتھن کیا ہے, جو سولہ نام دیے ہیں, اس کا جو ورنن ہے اسی کی بھی چرچا کریں گے ہم. تو سادھو پراسو پریتیاگتا, پریتیاگتا کا یعنی دان کی ارتھ میں انہوں نے لیا یہاں پر, تو سادھوؤں کو گیان درشن چاریتر کا پریتیاگ یعنی دان پراسو پریتیاگتا ہے. گیان درشن چاریتر کا پریتیاگ روپ دان گرہستوں میں سمبھو نہیں ہو سکتا, کارن وہاں چاریتر کا ابھاؤ ہے. رتنتر کا اپدیش بھی گرہستوں میں نہیں بن سکتا, کارن ان میں درشٹی باد آدی اوپر کے سوتروں کے اپدیش کا ادھیکار نہیں ہے. اتہ یہ سادھو پراسک پریتیاگتا روپ کارن مہرشیوں کے ہوتا ہے. یہاں بھی شیش کارنوں کا ابھاؤ نہیں ہے, ارہنت آدی کی بھکتی, نو پدارتھوں کا شردھان, شیل ورتوں میں نرچارتا کے ابھاؤ میں گیان چاریتر کا پریتیاگ ارتھات دان اسمبھو ہے, کارن اس میں ویرودھ آتا ہے. اتہ کیول اس بھاونا سے بھی تیرتھنکر کرم کا بندھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے, سب میں انہوں نے ہوتا ہے کی بات کی, اکیلے اس بھاونا کا وہ کارن ہے ایسا کہ اس میں باقی کارن گربھت ہے, اس لیے اکیلے اس کو بھی ہم کارن کہہ سکتے ہیں, یہ بات یہاں بتا رہے. سادھو سمادھی سندھارنتا, گیان درشن چاریتر میں سمیک پرکار سے اوستھان ہونا سمادھی ہے. سمادھی لینے یعنی مر جانا وہ نہیں ہے. یعنی اس میں سٹیڈی ایکاگر ہو کے رہ جانا وہ ہے اوستھا سمادھی. بھلے پرکار دھارن کرنے کو سندھارن کہتے ہیں. سنتھارا ہو گیا اس سادھوں کی سمادھی کا بھلے پرکار دھارن کرنا سادھو سمادھی سندھارن ہے. کسی کارن سے پراپت ہونے والی سمادھی کو دیکھ کر سمیکتوی پروچن وتسلتا, پروچن پربھاونا, ونے سمپنتا, شیل ورتاتیچار ورجت ارہنتادی میں بھکتی وش جو دھارن کرتا ہے وہ سمادھی سندھارن ہے. یہاں بھی شیش کارنوں کا ابھاؤ نہیں ہے, کیوں اس کا سدبھاؤ ان کارنوں کے ابھاؤ میں نہیں بن سکتا. ویاورت کے لوگ یوکتتا, ویاورت کے یوگ یوکتتا, جس کارن سے جیو سمیکتو گیان ارہنت بھکتی بہوشت بھکتی پروچن وتسلتا آدی کے دوارا ویاورت میں لگتا ہے اسے ویاورت یوگ یوکتتا کہتے ہیں. اس پرکار اکیلی اس بھاونا سے بھی تیرتھنکر پرکرتی کا بندھ ہوتا ہے, यह शेष कारणों का यथासंभव अंतर्भाव जानना चाहिए। अरहंत भक्ति घातीय कर्मों के नाश करने वाले केवल ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पदार्थों के देखने वाले अरहंत हैं, उनकी भक्ति से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। यह भावना दर्शन विशुद्धता के अभाव में नहीं पाई जाती, कारण इसमें विरोध आएगा। जो समय दृष्टि ने मिथ्यात्वी बहुत मनपूर्वक भक्ति कर रहा है तो उसको होगा कि नहीं बंध तीर्थंकर? नहीं होगा। बहुशुद्ध भक्ति द्वादशांक के पारगामी को बहुशुद्ध कहते हैं। उनमें भक्ति का अर्थ है उनके द्वारा व्याख्यान किए गए आगम का अनुगमन करना। हम तो भक्ति किसको समझते हैं? कुछ गाना बजाना उसको भक्ति है, अथवा अनुष्ठान का प्रयत्न करना बहुशुद्ध भक्ति है। दर्शन विशुद्धता आदि के बिना यह संभव नहीं है। प्रवचन भक्ति सिद्धांत अर्थात 12 अंगों को प्रवचन कहते हैं। प्रकृष्ट वचनम प्रवचनम श्रेष्ठ आत्मा के वचनों को प्रवचन कहते हैं। उनके प्रति भक्ति को प्रवचन भक्ति कहते हैं। इसमें भी शेष कारणों का अंतर्भाव रहता है। प्रवचन वत्सलता महाव्रती देश संयमी तथा असंयत समय दृष्टि में प्रेम रखना प्रवचन वत्सलता है। देखो यहाँ महाव्रती को उस जीव को प्रवचन कहा है, जिसके देश व्रत है उसको भी प्रवचन कहा, जो असंयत समय दृष्टि उसको उसके प्रति जो वत्सल्य वात्सल्य भाव है उसको प्रवचन वत्सलता नाम दिया है। इससे तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कैसे होता है यह शंका नहीं करनी चाहिए, कारण महाव्रतादि आगमिक विषयों में गाढ़ अनुराग का दर्शन विशुद्धतादि से अविनाभाव है। आगमिक विषय ने जो आगम में बताया है उस संबंधी तीव्र जो अनुराग है वो तो दर्शन विशुद्धि के बिना नहीं हो सकता। प्रवचन प्रभावना प्रभावनता प्रवचन अर्थात आगम की प्रभावना करने का भाव, या आप जो कहेंगे सब जीव जाने वो इसमें आ जाए, बाकी तो अन्य कारण है। ये प्रवचन प्रभावनता है। उत्कृष्ट प्रवचन प्रभावना का दर्शन विशुद्धता के साथ अविनाभाव है। अभीक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता अभीक्षण अर्थात बहुबार भाव शुद्ध अथवा द्रव्य शुद्ध में उपयोग लगाना। अभीक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता है, इससे तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। दर्शन विशुद्धता आदि के बिना इसकी अनुपपत्ति है, यानी उसके बिना वो नहीं हो सकता। यानी केवल देखो इसमें तो उसमें उपयोग लगाने की बात है, ऊपर प्रभावना में तो उसका प्रचार की बात थी और यहाँ तो उसमें उपयोग लगाने की बात थी। इन 16 कारणों से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है, अथवा सम्यक दर्शन के होने पर शेष कारणों में से एक दो आदि के संयोग से भी बंध होता है। यानी पूरे 16 के 16 वहां होगी ऐसा नहीं है। अभी हमने देखा जो चौथे गुणस्थान वाले हैं उसके ऊपर के गुणस्थानों वाले की कहां बात है, जो साधु के जो आचार आदि जो है उसकी बात तो है ही नहीं है। फिर भी जो यथा योग्य कुछ कारण उसमें से जो पाए जाते हैं तो वहां उनके बंध होगा। इस कर्म के उदय से ये बंध की बात हुई। इस कर्म के उदय से ने किस कर्म के उदय की बात है? हाँ, तीर्थंकर कर्म के उदय से सुर असुर तथा मनुष्य लोक के द्वारा अर्चनीय अर्चना है ने वो पूजनीय, पूजनीय अलग शब्द लाला है, वंदनीय तथा नमस्करणीय धर्म तीर्थ के कर्ता, तीर्थ है ने उपदेश जिन केवली होते हैं। हाँ, यहां से यस्य इनम कम्मस्य उदयन, ये मूल शास्त्र की बात है। अभी तक उन्होंने विशेष रूप से वीरसेन स्वामी ने जो पहले धवला में आदि बताया था उसकी बात यहाँ की। अब यहाँ महाबंध में जो है मूल शास्त्र में उसकी चर्चा चल रही है। हाँ, ये सब कोटेशन दिया
है। तो बुद्ध बलि का ना अभी
जो है वो बुद्ध बलि का है। धवला में से बहुत सारे उद्धरण उन्होंने बीच बीच में डाले। इस प्रकार पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस पर्याप्त तथा भव्य सिद्धिकों में ओगवत भंग जानना, ये किसकी बात चल रही थी? ये बीच में तीर्थंकर प्रकृति की बात आई थी, परंतु मूल विषय कौन सा चल रहा था, कौन बंधक है कौन अबंधक की बात चल रही थी। ये 40-41 पूछ पर बंधक के स्वामी की बात चल रही थी। ये 37 पेज से बंध स्वामित्व विषय प्ररूपना शुरू थी। तो इसका बंध कौन करते हैं, तो वहाँ पूछा गया था 14 जीव समास और गुणस्थानों में कौन कौन करते हैं, ये पूछा गया। तो यहाँ बता रहे हैं इस प्रकार अभी तक हमने जो चर्चा की, तो पंचेंद्रिय क्योंकि मार्गणाओं में भी देखना है, जीव समासों में भी देखना है, तो ये तीर्थंकर वगैरह प्रकृति का बंध कौन करेंगे, इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा पंचेंद्रिय करेंगे और षटकाय की अपेक्षा त्रस जीव करेंगे, भव्य मार्गणा की अपेक्षा भव्य करेंगे। इसलिए यहाँ चार नाम कौन लिए, पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस पर्याप्त तथा भव्य सिद्धिकों में ओगवद भंग जानना। अब आदेश से ने अभी अलग अलग गतियों में बात करेंगे। अब नारकियों में कौन कौन से बंद हो गए उसकी चर्चा यहाँ। ज्ञानावरण कितना बंधेगा, पांच ज्ञानावरण। अच्छा, उसमें से कुछ प्रकृति का इन्हें अभी इस तरह से उन्होंने ग्रुप बनाया, ये सर्व बंधक है, फिर उसमें गुणस्थानों में जो विशेषता है वो अलग से बताएंगे। तो पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण। देखो ये जो पूरी लिस्ट है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वहां पूछा था सातवें लाइन में कौन बंधक है, तो वहां बताया कि सर्व बंधक है, अबंधक नहीं है। सर्व बंधक है ने पहला दूसरा तीसरा चौथा गुणस्थान वाले सभी बंधक है, इसलिए यहाँ छह दर्शनावरण दिया। यदि पहले गुणस्थान में पूछते तो नौ का है दूसरे, परंतु वहां नौ का करने वाला ये छह का तो बंधक है ही है, पहले दूसरे गुणस्थान वाले इन छह का बंध के साथ और स्थान वृद्धि वगैरह तीन और बांधते हैं, उन्हें नौ बांधते हैं, परंतु छह का बंध कौन है, तो सभी है। सभी में जो बंध होता है उसको पहली लिस्ट बनाएंगे, और जो समय दृष्टियों के नहीं बनती मिथ्या उसकी बात बाद में करेंगे। इसलिए यहाँ पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, क्योंकि हमें लगे क्या अरे छह क्यों लिखा, नौ क्यों नहीं लिखा, क्या नारकी इसका बंद करते कि नहीं करते, स्थान वृद्धि का करते, उधर होता है क्या, उधर नहीं होता। साता असाता वेदनीय, अनंतानुबंधी चार को छोड़कर शेष 12 कषाय, ये क्यों छोड़े, हाँ प्रेरणा बिन देखो ये 12 कषाय, हाँ एक से चारों गुणस्थान वाले जिसका बंद करते उसको लेना था, तो अनंत अनुबंधी का बंद पहले दूसरे में होता है, केवल दूसरे में नहीं पहले में और दूसरे में, परंतु चारों में कौन से, 12 तो सभी जगह बनते हैं, इसलिए जो चारों में बनते हैं उसकी लिस्ट बनाएंगे। हाँ ऐसा नहीं कहेंगे, तीर्थंकर प्रकृति मात्र चौथे में बनती, नीचे नहीं बन रही है, तो उस लिस्ट में वो तीर्थंकर प्रकृति को नहीं लेंगे, जो चारों ही गुणस्थानों में बनती ऐसी ये लिस्ट बनेगी। स्त्री वेग नपुसक वेग बिना सात नौ कषाय है, क्या कोई नारकी इसको नहीं बांधते हैं? हाँ बांधते फिर देखो ये प्रतिपक्षी जो है हाँ उस अपेक्षा भी लेना और चारों में तो नहीं होता ना, तो सभी कौन सा बंद कर सकते हैं? पुरुष वेद का सभी गुणस्थान वाले बंद कर सकेंगे, अलग अलग जो इनकी बात है। पुरुष वेद का ही बंद करते ऐसा नहीं कहा, पुरुष वेद का बंद चारों गुणस्थान वाले कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो स्त्री वेद का बंद पहले दो गुणस्थान वाले करेंगे, नपुसक वेद का बंद अकेले पहले वाले करेगा, क्योंकि बंद विचित्ति होती है। कल में आती बात तो इसके बिना सात नौ कषाय, यानी एक पुरुष वेद और अन्य छह नौ कषाय, आसे रति अरति शोक भय जुगुप्सा। तो भय जुगुप्सा तो वो तो गृहबंदी है, वो तो सभी बांध रहे हैं, और बाकी जो युगल है कोई एक युगल बंधेगा उसमें से। आगे मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति, ये मनुष्य गति सभी बांधने वाले में किसको लिया? मनुष्य गति को, क्योंकि तीसरे चौथे वाले भी बांधते हैं, यानी तीसरे चौथे वाले तो मनुष्य गति को ही बांधते हैं, मात्र मनुष्य गति, और पहले दूसरे गुणस्थान वालों को बांधने के प्रति कोई निषेध तो है ही नहीं है, इसलिए सभी बांधने वाले जो कौन सी है तो मनुष्य गति। पंचेंद्रिय जाति वो तो सभी बांधेंगे, औदारिक तेजस कारवान शरीर इन्हीं का बंध होगा सभी को, समचतुरस्र संस्थान एक ही संस्थान को क्यों लिया? चौथा वाला, हाँ चौथे वाले की अपेक्षा ली। औदारिक अंगोपांग वर्णादि चार, मनुष्य गति प्रायोग्य अनुपूरी, क्योंकि मनुष्य गति बांध रहे तो इसको लिया। अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास, प्रशस्त विहाय गति, क्योंकि अप्रशस्त विहाय गति का कहाँ हो जाता है बंधे विच्छेद? दूसरे भी प्रशस्त सभी बांधेंगे। वज्र ऋषभ सहनन, नाराज नहीं ला रहा, नाराज शब्द पहले भी नहीं वापरा था उन्होंने, शॉर्ट फॉर्म में। त्रस आदर पर्याप्त प्रत्येक, स्थिर स्थिर शुभ अशुभ, सुभोग सुस्वर आदेय, यशस कीर्ति ऐशस कीर्ति, क्योंकि ऐशस कीर्ति भी बंधेगी ना चौथे तक। निर्माण उच्च गोत्र तथा पांच अंतराय का कौन बंधक है? तो सर्व बंधक है, अबंधक नहीं। इसका अर्थ समझ में आए? ये क्यों लिस्ट बनाई कि जो पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी गुणस्थान वाले बांधते हैं ऐसे कर्म यहां लिए, इसलिए कौन बंधक है? तो सभी नारकी बंधक। अब स्त्यान वृद्धि आदि 25 प्रकृतियों का ओघवत जानना चाहिए, अर्थात सासादन गुणस्थान पर्यंत बंधक है, यानी जो दूसरे गुणस्थान की बंध विच्छित्ति वाली जो हम 25 प्रकृतियां गिनते हैं उनका बंध कहाँ है? पहले और दूसरे में, तो सासादन तक बंध। मिथ्या तो नपुसक वेद हुंडक संस्थान संप्राप्त सुपाटिका सहनन का कौन बंधक है? मिथ्या दृष्टि बंधक है। पहले गुणस्थान में कितने बंध विच्छित्ति होती है? 16। नारकियों के लिए कितनी बंध विच्छित्ति होती है? 4। क्यों? आगे के वो बंद आते ही बांधते ही नहीं।
19 निकाले थे
तो ये कौन सी? तो पहले गुणस्थान में जो बनती है आगे की वो पहली चार छोड़कर आगे की बनती ही नहीं है, तो उसको निकाली भी दिया था पहले, इसलिए जितनी बनती उसमें से विच्छित्ति होगी। ख्याल में आई बात? देवों में उन 16 में से कितनी बनती है? देवों में
3
बाकी दिन ये बंधेगी
नहीं,
इसीलिए कंटिन्यूएशन क्रम से याद करना। जैसे हमने कौन से मिथ्यात्व संस्थान नपुसक वेद असंप्राप्त,
अब
उसके बाद एक केंद्रीय स्थावर और आत्म, ये तीन तो देवों के बन सकते हैं, इसलिए इसी ऑर्डर से लेनी है। पहले चार तो नारकी को भी बंधेगी, ये सात तक तो देवों की भी बंधेगी, और उसके आगे जो है कौन से सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त इंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय नरक गति नरक गत्यानुपूर्व नरकारी, ये मनुष्य तीन इंचों के बंधेगी, ना वो देवों के बंधेगी ना नारकियों के बंधेगी। सोलह में से सोलह के सोलह बंध किसके होता है, तो तीरियंच मनुष्यों के होता है, उसमें से बंध विच्छित होगी सोलह। देव उसमें से सात ही का बंध कर सकते हैं, पहली चार और वो एक इंद्रिय स्थावर आतक, आगे की उनके बनती ही नहीं है। और नारकियों के लिए पहले चार ही बनती, आगे की बनती नहीं, इसलिए यहां कहा वो चार का वो कौन बंधक है, तो मिथ्या दृष्टि बंधक है। मनुष्यायु के बंधक का ओगवत जानना चाहिए, अर्थात अविरत गुणस्थान पर्यंत बंधक है। तीर्थंकर प्रकृति का कौन बंधक है, असंयत सम्य दृष्टि बंधक है, ये बंधक है, शेष बंधक है। प्रथम द्वितीय तथा तृतीय पृथ्वी पर्यंत ऐसा ही जानना, यानी ये कथन कहां तक घटित होता है, तो तीसरे नरक तक।
मनुष्य का अविरत गुणस्थान बंधक है, तो इसका
नारकी कौन से गुणस्थान तक मनुष्यायु को बांधेंगे।
अच्छा,
नारकी की बात है, मनुष्यायु का बंद करने वाले, यानी नारकियों में कौन कौन सी प्रकृति, आदेश की बात चल रही थी। पहली लाइन में नारकियों में शब्द लगाया और ये सभी कथन नारकियों में चल रहा है, यानी यहाँ नारकी की बात है ना। नारकी मनुष्यायु का बंद कब तक करेंगे, चौथे तक, और तीरियंच कब तक करेंगे, पांचवे तक,
मनुष्यायु
और मनुष्य मनुष्यायु का
दूसरे
मनुष्य तीरंचों के लिए दूसरे में छह की विच्छित्ति हो जाती है।
हमने
तो ये नारकियों में घटित हो रहा है, तो नारकी मनुष्यायु का बंध कहाँ तक करें, चार गुणस्थान। मिथ्या दृष्टि भी बांध सकते हैं, इसलिए उसको भी लिया चौथे तक। अभी वो तीसरे में बंद होता नहीं आयु की, वो समझ लेना। चौथी पांचवी तथा छठी पृथ्वियों में इसी प्रकार जानना चाहिए, विशेष यहाँ तीर्थंकर प्रकृति नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध तीसरी पृथ्वी पर्यंत होता है। देखो यहाँ पृथ्वी पृथ्वी कहाँ, तो वहां रहने वाले नारकियों की बात है, उसको कहेंगे तीसरे पृथ्वी तक होता है, ये कथन पद्धति है। सातवीं पृथ्वी में छठी पृथ्वी के समान भंग है, बाकी तो बातें वैसी है, एक्सेप्शन अभी कहेंगे क्या विशेषता है। विशेष यहाँ मनुष्यायु नहीं, यानी मनुष्यायु का बंध नहीं है, क्योंकि बंध की बात चल रही है। मनुष्य अभी सातवीं पृथ्वी में मनुष्य गति प्राज्ञानुपूर्वी तथा उच्च गोत्र का कौन बंधक है, तो ऊपर के नरकों में हमने देखा था चौथे गुणस्थान तक तो सभी है पहले से लेकर, तो यहाँ कहते हैं सातवें नरक के लिए क्या रूल है, तो सम्यक मिथ्यात्री तथा असंयत सम्यक दृष्टि जीव बंधक है, ये बंधक है, शेष अबंधक है। तिरियंचायु का कौन बंधक है, मिथ्या दृष्टि बंधक है, ये बंधक है, शेष अबंधक है। शासन वाले को क्यों छोड़ा, सातवें नरक के लिए कंडीशन लिखा ना, सातवें नरक में ये बात है। छठे नरक तक के नारकी शासन वाले कौन सा बंद करेंगे, छठे नरक तक के नारकी शासन गुणस्थान वाले क्यों नहीं करेंगे, मनुष्यायु या तीरियंचायु दोनों का बंध हो सकता है। आयु के बंध के लिए सातवें नरक में ये कंडीशन है, वो जीव नियम से मिथ्यात्व में जाकर ही आयु का बंध करेगा और वो तिरंच आयु का करेगा। इसलिए यहाँ सासाधन को नहीं लिया, वही बंध विच्छित्ति तो दूसरे में होती है, तो सातवें नरक के लिए ये नियम है। छठे नरक तक के मिथ्या दृष्टि भी मनुष्य आयु बांध सकते हैं ना, हमने कहा इसकी मना कहाँ है। सम्य दृष्टि तो बांधते ही है, मिथ्या दृष्टि भी बंद कर सकते हैं, सासाधन वाले भी बंद कर सकते हैं। अब इसी का विशेषार्थ 48 पृष्ठ पर लिखा। सातवीं पृथ्वी वाला मरकर नियम से तिर्यंच होता है, इस कारण वहां मनुष्यायु का बंधन नहीं बताया। मरण मिथ्यात्व गुणस्थान में ही होता है, तिर्यंचायु का बंध मिथ्यात्व गुणस्थान में ही होता है। मनुष्य द्विक तथा उच्च गोत्र का बंध मिश्र तथा अविरत सम्यक्त गुणस्थान में ही होता है, नीचे नहीं होता। ये सातवें नरक के लिए ये कंडीशन। ये ऊपर के नरकों में वो मनुष्य गति उच्च गोत्र बांध सकते हैं, सातवें नरक का नारकी बांधेगा अपन कौन सा तीसरा या चौथा गुणस्थान वाला है तब तक बांधेगा। ये गति की बात है, आयु की नहीं। गति बांधी तो वहां जाना पड़े ऐसी बात नहीं होती, जो आयु बंधी है वहां जन्म लेगा वो। तो सातवें नरक के नारकी के लिए क्या नियम है, वो भले सम्यक्त में रहा बहुत लंबे काल तक, फिर भी जब अभी आयु खत्म होने को आती है तब मिथ्यात्व में जाएगा, मिथ्यात्व में आयु का बंध करेगा, तिर्यंच आयु का ही बंध करेगा और मरकर वो हिंस्र श्वापद में जन्म लेगा, हिंस्र पशु होगा। हिंस्र समझते ना, हिंसक जैसे सिंह है वाघ है ऐसे। हाँ, सिंह वाघ मरकर सातवें नरक में नहीं जाएंगे कभी, वो पांचवें तक जा सकते
हैं।
हाँ, वो लिस्ट है सब। वो अपनी अपनी लिस्ट देख के फिर जाते हैं। हमें वो लिस्ट याद करनी पड़ती है, जाने वालों के लिए कुछ नहीं। जाएंगे तो मनुष्य जाएंगे या मत्स्य जाते हैं, जो वज्र शुभ नारा सहने वाले हैं सातवें नरक में जाने योग्य दो ही जीव, या तो मनुष्य या वो मत्स्य। यानी दोबारा कौन जा सकता है, ऐसे जब आता है ना सातवें नरक से मरकर फिर सातवें में जाने वाला, तो सातवें से निकलकर पहले सिंहादि कुछ होगा, वो तो डायरेक्ट फिर सातवें में नहीं जाता, तो उसमें से या तो मनुष्य में जाएगा या मत्स्य में जाएगा, और मत्स्य होकर फिर सातवें में जाएगा। बाकी में तो कितने बार जा सकते हैं अधिक से अधिक, उसके जो हर एक की उसकी भी लिस्ट है। हाँ, सब लिस्ट देख देखे। अब आगे, अभी तक हमने नारकियों में बंध देखे कौन कौन से बंध प्रकृतियां वगैरह वगैरह, अब तिर्यंचों में देखेंगे।
ये लिस्ट बताइए आपने सर्व बंध की। हाँ, ये दो तारीख को आएंगे तो हम भूल जाएंगे इसमें,
तब तक बंद करते रहना तो नहीं।
जाना ही नहीं
है। हमने बंध विच्छेदी याद की ना,
मेरे इस तरह से सोचा इसको नहीं भूले कैसे करें। ये जो लिस्ट बताई सर बंधे में कुल 70 प्रकृति है टोटल, ये भी गिनी अपने 70 गिनी, और दूसरे गुणस्थान की 25 और चार इसमें नरक में विच्छित होती है 99 हो गई है। अब रही अपने सर मनुष्यायु और जो
तीर्थंकर
तो 101 ले गए। तिरंचाय की बात करें तिरंच दूसरे गुणस्थान में 25 में है, इसलिए 101 का हिसाब आ गया। बस कर्मकांड से याद करना पड़ेगा। 101
बंद विच्छित्ति जब याद होती है ना तब ये सभी आसान हो जाता है। एक बंद विच्छित्ति याद करो, बाकी बहुत जगह वही एप्लीकेबल। अब तिरंचों में देखेंगे, जो नरकों में बनता है जो तिरंचों में नहीं बनता, ऐसा क्या है तेजन? जो नारकी बांध सकते हैं तिरंच नहीं बांधते, तीर्थंकर प्रकृति। तब यहाँ देखेंगे, एक तो वहां चार गुणस्थान थे, यहाँ पांच है, तो पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता साता प्रत्याख्यानावरण और संज्ञान रूप आठ कषाय, क्योंकि अभी ऐसी प्रकृतियां ली जो पांचों गुणस्थानों में बनती। वहां तो बारह कषाय लिए थे, चार गुणस्थान थे, यहां पांचवे तक लेना है, इसलिए आठ कषाय लिए। स्त्रीवेद नपुसक वेग बिना सात नौ कषाय, उसकी तो बात वैसी थी। देवगति पंचेंद्रिय जाति, क्योंकि ये सब मानते हैं ना पहले से लेकर।
तब भी आपने पूछा क्या होता था विशेषता, नारकी वैसे तीन तीर्थंकर था और आता भी।
बाकी तो वो तो एक इंद्रिय का बंध नहीं करते हैं, वो पंचेंद्रिय को ही बांधते हैं, वो मूल एक मेन प्रकृति पूछी। तो देवगति पंचेंद्रिय जाति, वैक्रियक तेजस कारमान शरीर, क्योंकि देखो वैक्रिक शरीर को ही क्यों लिया, औदारिक क्या नहीं बांधते, बांधते ना, परंतु सभी गुणस्थान वाले बांधने चाहिए। तो जो चौथे पांचवे गुणस्थान वाले हैं वो देवगति को ही बांध रहे, तीसरा गुणस्थान वाला भी देवगति को, तो देवगति के सहित तो वैक्रिक शरीर ही बंधेगा, इसलिए इसको लिया। समचतुरस्र संस्थान देवगति के साथ बंधने वाला, वैक्रिक अंगोपांग, वर्णादि चार, देवगति प्राज्ञानुपूर्वी, अगुरु लघुअधिचार, प्रशस्त विहाय गति, त्रसाधिचार यानी त्रस बाधर पर्याप्त प्रत्येक, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ, ये तो ध्रुव बंदी तो नहीं है क्या? स्थिर और अस्थिर बनते, जैसे साता और असाता वेगनी बनते रहते हैं, वैसे से वो उसको ध्रुव मत कहो, ध्रुव दई है वो, ध्रुव बंदी नहीं है, ख्याल में ना, परंतु अल्टरनेटली इनका बंध होता रहता है, स्थिर का भी होगा अस्थिर का भी होगा, क्योंकि हमने देखा था इनका अस्थिर की बंध विच्छित्ति कहाँ होगी, छठे में, और स्थिर की आठवें में। तो बंध अल्टरनेट होता है इनका, परंतु दोनों का ही बंध हो रहा है इसलिए दोनों को लिया, पर दोनों का एट अ टाइम नहीं होता किसी को, वो प्रतिपक्षी वाली प्रकृति है। उदय दोनों का एट अ टाइम है, स्थिर अस्थिर और शुभ अशुभ का उदय एट अ टाइम है, पर बंध एक का है, दोनों का एक समय में दोनों का बंध नहीं होता, स्थिर का होगा या अस्थिर का होगा, परंतु पांचवे गुणस्थान में अल्टरनेटली दोनों का ही बंध होता रहता है, इसलिए उसको लिया, दोनों को लिया।
ये बंध और उदय में यही फर्क है ना, खाली स्थिर अस्थिर दोनों का उदय देता है और बंध एक,
बंध में एक एक है। सुभग, अभी ये देवगति बांधता है सभी बांधने वाले, इसलिए सुभग लिया, सुस्वर आदेय, यशस्कृति ऐशस्कृति दोनों ही लिए। निर्माण उच्च गोत्र तथा पांच अंतरायों का कौन बंधक है, तो कहते मिथ्या दृष्टि से लेकर देश संयमी पर्यंत सर्व बंधक है, अबंधक नहीं है, यानी इतनी प्रकृतियां नियम से सभी को बंधेगी, इतनी ने वो स्थिर या अस्थिर वाली ले लेना, यहाँ पर जहां जो प्रतिपक्षी वाली है वहां समझ लेना। वैसे सात नौ कषाय भी जब कहा था तो एक युगल बंधेगा, पुरुष वेद तीन वेद में से एक वेद लिया, वह जुगुप्सा तो निरंतर बनती है, निद्रो बंदी है, एक युगल ऑप्शनल है। स्त्यानुद्धि त्रिक अनंतानुबंधी चार, स्त्रीवेद तिर्यंचायु मनुष्यायु, देखो ये तिर्यंच है ना, इसलिए हाँ इनको यहाँ पर काउंट किया, दूसरे गुणस्थान में 25 और 6 31 प्रकृतियां यहाँ पर बताएंगे, हमने कितनी याद की थी 25, ये तिर्यंच है, तो तिर्यंचों में और क्या विशेषता है, जिसको हम चौथे में गिनते हैं, ऐसे औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग वज्रषम नारा सहनन मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपुरी और मनुष्यायु, ये छह प्रकृतियों को हम दूसरे गुणस्थानों में गिनेंगे, किसके लिए, तिर्यंचों के लिए भी और मनुष्य के लिए भी। तो यहाँ इसी को लेकर तिर्यंचायु मनुष्यायु तिर्यंच गति मनुष्य गति औदारिक शरीर चार संस्थान ये बीच वाले चार लेना, औदारिक अंगोपांग, पांच सहनन। वैसे तो दूसरे गुण स्थान में हम चार सहनन देखते हैं, परंतु पांचवा जो है जो हम वज्रषण नारा सहनन चौथे में गिनते हैं वो हमने यहाँ गिना। दो अनुपूर्वी यानी तिरियंच अनुपूर्वी और मनुष्यानुपूर्वी, उद्योत अप्रशस्त विहाय गति दुर्भग दुस्वर अनादेय तथा नीच गोत्र का बंधक कौन बंधक है, तो कहते मिथ्या दृष्टि तथा सासाधन सम्य दृष्टि बंधक है। ये बंधक है, शेष अबंधक है। यानी यहाँ पर ये बात कहना चाहते हैं कि दूसरे गुणस्थान में जितनी बंध विच्छित्ति होती है तिर्यंचों के लिए, उन प्रकृतियों के बंधक कौन है, तो पहले और दूसरे गुणस्थान वाले। अभी शेष 16 प्रकृतियां कहेंगे उनके बंधक कौन है, तो कहेंगे मात्र मिथ्या दृष्टि बंधक। तिर्यंच है वहां तो 16 के 16 बंध योग्य है ना, वहां पर तिर्यंचों में तो बनती है, तो उनका बंधक कौन है, मिथ्या दृष्टि। विशेष मिथ्या तो हुंड संस्थान आदि 16 प्रकृतियां मिथ्या तो दंडक में सम्मिलित है, उनके बंधक मिथ्या दृष्टि होते हैं वे बंधक है, शेष अबंधक है। अब अप्रत्याख्यानावरण चार का कौन बंधक है, अब तिर्यंचों के लिए चौथे गुण स्थान में कितने बचे, चार। कौन से चार, अप्रत्यय, उसकी बात है। अब उसके बंधक कौन हो गए, एक से चार, अकेले चौथे को नहीं कहने। तो अप्रत्याख्यानावरण चार का कौन बंधक है, मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्य दृष्टि पर्यंत बंधक है। इसका अर्थ समझ में आता है तेजन, क्योंकि इनकी बंध विच्छित्ति तिर्यंचों के लिए चौथे में होती है, यानी चौथे तक बंध है, तो चौथे तक है यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी गुण स्थान वाले और प्रत्याख्यान चार को तो बांध ही रहे। पहले हमने आठ को तो सभी बांधते कहा, फिर ये चार भी लिए और पहले और दूसरे गुण स्थान के लिए अनंतानुबंधी कहे थे, पहले दो गुण स्थानों में 16 बनते कषाय में, तीसरे चौथे में 12 बनते और पांचवे गुण स्थान में 8 कषाय बनते। ये बंधक है, शेष अबंधक है। अब देवायु का कौन बंधक है, ये आयु को अलग इसलिए निकाला क्योंकि तीसरा गुण स्थान वाला वायु का बंध नहीं करता है, तो मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक्ति असंयत सम्यक्ति तथा देश संयमी बंधक है। ये बंधक है, शेष अबंधक है। अब कहते पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमति में तिर्यंचों के समान भंग जानना, क्योंकि पंचेन्द्रिय तिर्यंच कहो तो भी पांच गुण स्थान तक है। पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त कहने कौन, पुरुष वेद वाले नपुसक वेद वाले वो भी पांच गुण स्थान तक है और योनिमति यानी स्त्री वेद वाले तिर्यंच वो भी पांच गुण स्थान तक पाए जाते हैं। तो ये जो अभी हमने कौन कहां कितना बंद करता है वो उनमें भी यही लागू होगा। ये बात भी देखना पड़ेगा क्योंकि लब्धि अपर्याप्तकों में तो एकमात्र मिथ्या तो गुण स्थान है, तो उसमें से जो दो वो अभी हम यहीं पर पढ़े रुकेंगे हम, तो उसमें जो बंध योग्य प्रकृति है उसकी चर्चा हम अभी आने के बाद करेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूजे नो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देव। संतोषी सर।